Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में उसके लिए सबसे बड़ा बल होता है उसके संकल्प। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही वो बन जाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी, जो हमें मनोचिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ओम शांति।
ओम।
वेलकम टू आशो।
ओम शांति।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले सीरीज में स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ डील किया था। हमने उसके बारे में सारी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व किए। अब इस सीरीज में मैं मनोचिकित्सा, जिसके बारे में आज हम सभी जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके बारे में नॉलेज रखें, क्योंकि वैसे तो मनोचिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन अगर हम छोटे तरीके से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि जो पागल व्यक्ति होते हैं वही वहाँ पर जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है?
वंडरफुल, है ना। आमतौर पर यही धारणा है
जी
कि मनोचिकित्सा में जो जाते हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो पागल लोग ही है।
हाँ जी।
परंतु एक बहुत बड़ा भ्रम है
जी।
वास्तव में देखो तो साइकेट्री डिपार्टमेंट की जिनको आवश्यकता है, जैसे भी मनोचिकित्सक की जिनको आवश्यकता है, उसमें से करीब 15-20% ही पागल है।
अच्छा।
कहेंगे 80-85% लोग पागल नहीं है।
Okay.
उनको और कोई तकलीफ है, और कोई समस्याएं हैं, परंतु लोगों में यह भ्रांति है, इसके कारण वह वहां जाते नहीं।
Correct.
हो सकता है कि जीवन भर दुखी होते हैं।
हाँ जी।
जीवन भर उस समस्या को झेलते रहते हैं
जी।
तो यह जो मिसकंसेप्ट है उसको सबसे पहले दूर करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल।
और इसके कारण समस्या जो होती है कि जो मनोचिकित्सा नहीं लेते, विशेष तौर पर भारत में
जी।
अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो कहते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति का काउंसिलर होता है। वो स्पेसिफिकली कहते भी है कि भी ये मेरा साइकोथेरेपिस्ट है या ये मेरा साइकियाट्रिस्ट है, है ना। भारत में लोग नहीं जाते हैं। अगर आप कहेंगे भी कि भाई साइकोथेरेपिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, तो कहेगा क्या मैं पागल हूं? हाँ, परंतु वह बात नहीं है
जी।
और ये भ्रांति आई भी क्यों है, है ना। इसीलिए ये भ्रांति आई है क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो पेशेंट्स है उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो दवाइयां ही देते।
ओके।
इस प्रकार की, इनफैक्ट यहां देखेंगे दोनों प्रकार का दोष है
जी,
है ना। अधिकतर देखेंगे तो भी लोगों की यह गलत मान्यता है
जी।
कुछ हद तक हमारा भी दोष है, है ना। डॉक्टर्स का भी दोष है क्योंकि हम डील उस प्रकार से नहीं करते हैं।
ओके।
कि पेशेंट्स को अगर उस प्रकार से डील भी करे, उनको अच्छे से समझाए भी, उनकी बातों को सुने भी ठीक से, उनको अच्छे से समझाया भी जाए कि अधिकतर तुमको दवाई की जरूरत नहीं है
जी।
ना, उनकी बातों को सुना भी जाए ठीक से, तो भी ऑलमोस्ट मोर देन 50% वह बातें ठीक हो जाती है।
हाँ जी।
तो एक तो है ना, ये जो सारी बात है उसको दूर करने की जरूरत है लोगों के मन से भी,
क्योंकि मन से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं एज अ साइकियाट्रिस्ट के पास में, तो हमारी सोच ही यही रहती है कि यहाँ पे तो सिर्फ पागल व्यक्ति आते हैं। तो पहले ही सोच हम अपने अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं कि मैं एक पागल तो नहीं हो गया कहीं। वो डर जो है इसकी वजह से हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते नहीं।
तो यही बात है कि अलग अलग माध्यम से, जैसे हमारा शो है वह बहुत बड़ा माध्यम है।
हाँ जी।
कि यहाँ जब मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो सिर्फ पागल नहीं जाते
जी,
ना, वो थोड़े से ही है लोग
जी,
ना। आगे भी हम उसके भी चर्चा कर पाएंगे। मेजोरिटी है, उनको कोई प्रकार का स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो कोई भी प्रकार से पागलपन नहीं है और क्यों जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए जाना है क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी है
जी,
जो बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिससे आपकी एफिशिएंसी कम हो गई है।
करेक्ट,
कहते हैं कि आज जो हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी है उसका हम 2-3% ही यूज कर रहे हैं। ना, जो मन की जो एक्चुअल शक्ति है ना, उसका हम थोड़ा सा ही परसेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल हो जाए तो आपकी एफिशिएंसी अनेक गुना बढ़ सकती है।
अच्छा।
हाँ, इसलिए भी हमें मनोचिकित्सक का जो है सहारा लेना चाहिए।
हाँ जी।
वो हर बार मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं भी है।
करेक्ट।
ये नहीं कहेंगे कि भी हर बार मनोचिकित्सक के पास जाओ।
करेक्ट।
और बहुत सारी चीजें हो सकती है।
हाँ जी।
है ना, आज देखेंगे तो आध्यात्मिक बातें भी, मेडिटेशन का अभ्यास करो ना, वो आपको नजदीक लाने में बहुत मदद करेंगे।
ओके।
आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं।
हाँ जी।
कि जो आपको और ज्यादा नजदीक लाने में मदद करेंगे।
हाँ जी।
और फिर जब कोई समस्या है तो फिर ये साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। और साइकेट्रिस्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जो पागलपन नहीं है।
ओके।
है ना, तो ऐसे पूरे होलिस्टिकली आप समझेंगे तो जब जरूरत है साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए।
जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और एक भ्रांति आ रही है कि लोग कहते हैं कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो कभी ठीक ही नहीं होंगे। ये एक बात के बारे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम तो बहुत भरोसे से आपके पास आते हैं और ऐसे में अगर क्योर ही नहीं होंगे तो फिर आने का फायदा क्या?
नहीं, वंडरफुल। देखो, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब ये जो बात है इसमें भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। यह जो स्टिग्मा है वो पहले स्टिग्मे के साथ जुड़ा हुआ है
जी,
कि साइकेट्रिस्ट के पास पागल ही जाते हैं।
हाँ जी।
ना, कि भी कोई भी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास अगर 100 लोग जाते हैं और वह साइकेट्रिस्ट ठीक से उसका इलाज करता है, नहीं, उसको ठीक से सुनता है, जहाँ साइकोथेरेपी की जरूरत है साइकोथेरेपी देता है, जहाँ मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन देता है, उसका कॉज निकालता है, और पेशेंट भी अगर ठीक से ट्रीटमेंट लेता है
जी।
यहाँ पेशेंट की भी गलती होती है अधिकतर
कि
पेशेंट भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेता है। जैसे हम जानते हैं कि भी टीबी की ट्रीटमेंट 8-9 महीने चलती है, जैसे कि भी टीबी के सिम्टम्स जो है
जी,
कि बुखार आना खांसी होना, वो तो 2 महीने में भी चले जाएंगे
जी।
लेकिन कोई कहे कि मेरा बुखार ठीक हो गया, मेरी खांसी ठीक हो गई, ये भी दवाई बंद, तो फिर से टीबी हो जाएगा।
करेक्ट।
है ना, उसका जो कोर्स है 8-9 महीने का, तब तक उसको ट्रीटमेंट लेनी है। फिर डॉक्टर वो टेस्ट करेगा
जी।
और जब देखेगा कि अब बिल्कुल टीबी के जो जर्म्स है वो खत्म हो गए, तब वो कहेगा कि अब टीबी की दवा बंद कर
दो। तो ऐसे आप कहना चाह रहे हैं कि वो कोर्स जो है कंप्लीट करना चाहिए।
नहीं, जैसे टीबी में तो है ना, वो उस प्रकार की टेस्ट है
जी,
कि भी वो एक्सरे करेगा और कुछ टेस्ट करेगा कि जिसको पता चलेगा कि भी ये उसके जर्म्स बिल्कुल खत्म हो गए।
हाँ जी।
लेकिन साइकेट्री में ऐसी 100% कोई टेस्ट नहीं है।
ओके।
कि भाई वो पूरे केमिकल स्टेबल हो गए। नहीं, ऐसी कोई साइकोलॉजिकल भी टेस्ट नहीं है।
Okay.
कि भी आपका वो स्टेबल हो गया। साइकेट्रिस्ट जज कर पाएगा, काफी हद तक वो जज कर पाएगा, बट इट कैन नॉट बी 100% फुल प्रूफ।
Okay.
है ना, और अधिकतर तो वह भी लोग नहीं करते। कि भी 3 महीने में मैं ठीक हो गया तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही नहीं है, दवा बंद, और वो फिर से शुरू हो जाता है।
Correct.
और फिर कहते कि अभी तो जाना ही नहीं है डॉक्टर के पास, और फिर हम साइकेट्रिस्ट को ब्लेम करते।
Correct.
है ना, और थोड़ा यहाँ भी गलती है कि कई बार साइकेट्रिस्ट भी, हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो रूट कॉज को ज्यादा देखते हैं।
करेक्ट
ना, तो ये सब मिला के मैं ऐसा कहूंगा कि अच्छे साइकेट्रिस्ट अगर ठीक से सारा करते हैं है ना, कि जो आमतौर पर बताया जाता है, तो 80% तो पेशेंट ठीक हो जाते।
अच्छा।
हाँ, लेकिन अब जो इस यहाँ जो बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो 80% किसी को भी नहीं कहते हैं कि मैं ठीक हुआ।
करेक्ट।
अगर एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट या तो कहे कि एक अच्छा किडनी स्पेशलिस्ट किसी का किडनी स्टोन निकाल दे तो सारी दुनिया में वो ढंढेरा पिटाएगा।
करेक्ट।
कि भी इस नेफ्रोलॉजिस्ट ने या तो इस यूरोलॉजिस्ट ने मेरा किडनी स्टोन ठीक कर दिया, तुम सब उसके पास जाओ।
करेक्ट।
लेकिन किसी का डिप्रेशन एक साइकियाट्रिस्ट ने ठीक कर दिया, वो किसी को नहीं कहेगा।
करेक्ट।
उल्टा वो साइकियाट्रिस्ट को भी कह के जाएगा कि किसको बोलना नहीं। हमको भी बोल के जाते
जी
कि किसको बोलना नहीं। आपके टीवी शो में भी नहीं बोलना कि भाई मैं ठीक हुआ था
जी।
यहाँ तक बोल के जाते हैं कि ऐसा कोई किस्सा भी डिस्कस नहीं करना ताकि मालूम पड़े, है ना।
बिल्कुल।
तो इस प्रकार का स्टिग्मा है
जी,
जिसके कारण समझ में नहीं आता है कि कितने लोग अच्छे होते।
करेक्ट।
और जो केसेस ठीक नहीं हुए, जो 20% ठीक नहीं हुए, वो हमें हमारे सामने बार बार आते हैं।
करेक्ट।
कि भाई ये किस्से ठीक नहीं हुए।
करेक्ट।
जो कुछ किस्से बिगड़े है ना
जी,
वो बार बार सामने आते।
ओके।
हाँ, कई बार मैंने देखा एक घंटा भी दे दो तो भी लोग कहते नहीं 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 मेरे पड़ोस में एक किस्सा बिगड़ गया है। अभी कुछ भी हो जाए इनको मैं दवाई नहीं देने वाली, परंतु वो तो 100 में एक किस्सा बिगड़ा है। ये जो 99 अच्छे हो गए हैं वो हमारे सामने नहीं आते।
करेक्ट।
वो जो एक बिगड़ा है वही बार बार सामने आ रहा है।
करेक्ट।
तो इसके कारण हमें लगता है कि ये पेशेंट अच्छे नहीं होते।
ये भी एक भ्रांति है कि ऐसे कहा जाता है कि हम कभी ठीक ही नहीं होंगे। जो व्यक्ति वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं इलाज के लिए, तबीयत धीरे धीरे और ही ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। अगर इस डर के साथ में हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर एक्सपेक्टेशंस फिर कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में क्या किया जाए?
लेकिन सचमुच ठीक होते हैं। अच्छा। प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो सचमुच ये पेशेंट ठीक होते हैं
जी।
अब इसमें दिक्कत यह है कि जो मात्रा में दवाई देते हैं कई बार पेशेंट कम ही लेते हैं।
अच्छा।
कि जो उनको कहा गया है कि भी 10 मिलीग्राम मेडिसिन लेनी है, तो उनके मन में कोई ना कोई डर है तो दवाई कम लेते।
अच्छा।
तो इसके कारण वो ठीक नहीं होते। अगर ठीक से ली जाए तो ये पेशेंट ठीक होते।
तो ये ट्रस्ट हमें बिल्डअप करने की जरूरत,
बिल्ड करना पड़ेगा। भले हमारी ओर से एक छोटी सी गलती है,
हाँ जी,
है ना, जो हमें भी करेक्ट करनी होगी,
हाँ जी,
कि पेशेंट का एक हम कहेंगे कि होलिस्टिक इलाज करना चाहिए।
करेक्ट।
एक टोटलिटी में इलाज करना चाहिए कि उनका रूट कॉज भी रिमूव करे।
करेक्ट।
कि ये बताया गया ही है कि हमें जो उसका मूल कारण है वो मूल कारण का भी इलाज करना है।
Correct.
उनकी साइकोथेरापी भी करनी है
जी,
ना, कि भी उसको भी ढूंढ निकालना है। और अगर जब तक हम उसका रूट कॉज रिमूव नहीं करेंगे तो एक टोटालिटी में जो पेशेंट को ठीक कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे। पेशेंट को सुनना भी है
जी,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो वातावरण के फैक्टर्स है वह भी कार्य कर ही रहे हैं।
करेक्ट।
तो ऐसे अगर ठीक से इलाज किया जाए तो पेशेंट ठीक होते ही है।
डॉक्टर साहब, एक और एक बात दिमाग में आई कि कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं उस दवाइयों के कि हम लेना ही नहीं चाहते। क्योंकि साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हॉन्टिंग होते हैं कि हम उसके साथ डील नहीं कर पाते।
वंडरफुल। नो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग
जी,
है ना। एडिक्शन से भी ज्यादा लोगों के मन में यह भय होता है, यह खौफ होता है, है ना। पहला ही प्रश्न पूछते है ना, जैसे ही दवाई की बात आती है पेशेंट यही पूछते कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है।
बिल्कुल।
है ना, यह मैं मानता हूं कि भाई हर दवाई की साइड इफेक्ट है। लेकिन अभी ध्यान क्या रखना है ना, कि भाई वो केमिकल है तो उसकी साइड इफेक्ट है।
करेक्ट।
परंतु अभी इसका मतलब ही नहीं कि दवाई न ले। अभी साइड इफेक्ट में दो प्रकार के साइड इफेक्ट है
जी।
एक तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो वो टेम्पररी है।
करेक्ट।
और वो भी सबको नहीं होती है।
ओके।
फॉर एग्जाम्पल, आप जो पैरासिटामोल लेते हो वो पैरासिटामोल की भी साइड इफेक्ट है। आप पूछे बिगर पान वाले की दुकान से भी तो पैरासिटामोल लेते हो सर दर्द होता है तो
जी।
थोड़ी सोचते हो, उसकी भी साइड इफेक्ट है ना, परंतु वो टेम्पररी है। तो ऐसे ही जो साइकेट्रिक के मेडिसिन है उसमें टेम्पररी कुछ हो सकता है कि आपका मुंह सूखता है, कोई कोई दवा में कॉन्स्टिपेशन होता है ना, परंतु ये टेम्पररी है। समझो आपने 5 दिन ली फिर बंद कर दी तो समाप्त हो जाएगा, है ना, वो कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होना है। डरना वहां पर है कि कोई दवा से अगर परमानेंट डैमेज होना है, कि कोई दवा से आपका लीवर डैमेज होना है, कोई दवा से आपकी किडनी डैमेज होनी है, थायराइड डैमेज होना है, कोई दवा से आपके ब्लड पर इफेक्ट होना है, और ऐसी कोई भी दवा डॉक्टर देंगे तो आपकी टेस्ट भी कराएंगे, और वो तभी देंगे कि तब बेनिफिट बहुत ज्यादा है
और नुकसान थोड़ा
है, और वो नुकसान बहुत कम है, और वो चेक भी करेंगे, और वो होता है 5-10% को। समझो 100 पेशेंट को दिया तो 5 को ही वो साइड इफेक्ट होने के पास, और वो चेक करेंगे
जी,
फॉर एग्जांपल कि भी लीवर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो चेक करेंगे और वो मात्रा कम होगी। समझो थोड़ा भी स्टार्ट हुआ तो दवा को बंद कर सकते हैं,
बिल्कुल, बिल्कुल।
लेकिन बेनिफिट बहुत बड़ा है, फिर आपका पूरा जीवन समाप्त तो हो रहा है, उसमें जो समस्या है ना, तो उसका बैलेंस वही तो डॉक्टर की एक्सपर्टी है,
करेक्ट,
कि उसको ये चेक करना है। तो इसलिए डॉक्टर जो दे रहा है, आप भले उन्हें ये कहो कि आप मिनिमम से स्टार्ट करिए, आप जो भी चाहते हैं वो टेस्ट करने को मैं तैयार हूँ
जी,
है ना, कि भी आप वो टेस्ट करिए ना, ऐसा करके आप स्लो जाइए तो बेनिफिट बहुत बड़ा है
ना।
उसको कर सोच करके दवा नहीं लेना
उसमें, वो गलत है।
हाँ, उसमें समस्या बहुत बड़ी
बढ़ जाएगी,
और वो थोड़ी सी है,
करेक्ट,
है ना, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो 4-5 ही दवाइयां हैं कि जहाँ इस प्रकार की साइड इफेक्ट है,
ओके,
है ना। हाँ, फिर
बाकी सारी दवाइयाँ नॉर्मल है, वो सिर्फ हमें अपने क्योर करने के लिए ही दे रहे हैं।
हाँ, और जहाँ वो जरूरी है वो लेना चाहिए, जैसे क्लोजापिन एक दवाई है,
ओके,
कि जो वंडर कर सकती है कुछ मेडिसिंस में,
ओके,
भल उसमें साइड इफेक्ट है कि व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा एकदम कम हो जाती है,
ओके,
हाँ, लेकिन अब तक मेरे एक भी पेशेंट को नहीं हुआ।
अरे वाह,
हम चेक कर रहे हैं भाई, जब भी कहीं को संभावना है लेकिन हम चेक करते हैं तो पकड़ में आ जाता है
जी,
सचमुच किसकी एकदम कम हो गई और उसको हमें एडमिट करना पड़ा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
अरे वाह,
है ना,
दैट इज अ गुड प्रोग्रेस।
हाँ, बट नहीं, अच्छे हुए बहुत सारे हैं।
हाँ जी,
कि जो एकदम क्रॉनिक केसेस थे, कि जो घर में बहुत बड़ी समस्या कर रहे थे
जी,
है ना, जो लोगों के घर परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द थे
जी,
ऐसे लोग अच्छे हो गए,
वाह,
है ना, तो कहेंगे कि ब्लेसिंग बहुत बड़ा है, खाली वो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बस वो प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग से, इट्स अ, जैसे भी मॉडर्न मेडिसिन का मैं समझता हूँ एडवांटेज एक ही है कि जो कुछ भी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है,
करेक्ट,
कि हमें पता है ना। कई बार ये मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ,
हाँ जी,
कि जैसे भी आयुर्वेद में कहते कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी हैवी मेटल्स होती है, ना, इट कैन हैव अ साइड इफेक्ट,
ओके,
ना,
इवन आयुर्वेदा हैज अ साइड इफेक्ट,
नहीं, उसमें है ना लेड होता है कई बार, तो इट कैन, मैं नहीं कहता हूँ कि भी सब में होता है
जी,
बट अच्छा भी है भी, पर से एलोपैथी में ज्यादा साइड इफेक्ट है भाई, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन उसमें लेड होता है तो वो हो सकता है,
ओके,
तो है ना, वो हमको पता होना चाहिए।
हाँ जी, डॉक्टर साहब, एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि हम जा ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही हम साइकियाट्रिस्ट का नाम लेते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि लोगों को लगता है नहीं ये तो आपको और तबीयत ख़राब कर देंगे, तो ऐसे में लोगों की बातों को किस तरह से एब्जॉर्ब करके उसके बाद हम आपके पास आएँ?
सबसे अच्छा तो यह है कि जो लोग अच्छे हुए हैं
जी,
है ना, उनको मोटिवेट करना चाहिए, या तो वो लोग सामने आए, है ना, सचमुच मैं बताऊंगा, और मेरे कुछ पेशेंट है ऐसे,
अच्छा,
हाँ, मेरी एक डीवीडी, पहले हमारा एक पूरा सा डिप्रेशन पे शो चला है,
अच्छा,
है ना, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में डिप्रेशन पे एक पूरी सीरीज चली है,
अच्छा,
वो कईयों ने देखी,
हाँ जी,
उसमें भी हमने इसी बात का जिक्र किया था। तो कुछ लोगों ने वो देखी और वो देख के मेरे पास आए और कहा कि देखो हमारे रिलेटिव अच्छे हो जाएंगे ना, हम सबको बोलेंगे। और सचमुच उनके रिलेटिव अच्छे हुए, उन्होंने सबको बोला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेट पे भी लिखा अपने नाम से कि हमारे रिलेटिव अच्छे हुए, इनके पास आप जाओ। तो नो दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, है ना। और ऐसा बहुतों को करना चाहिए,
बिल्कुल
ना। और ऐसा अगर काफी लोग करने लगे तो एक माहौल बनेगा कि भाई ये पेशेंट अच्छे होते हैं और इसके बारे में स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि हमें रूट कॉज को जानने की जरूरत है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो वो रूट कॉज को कैसे हम ढूंढे?
वंडरफुल। जो भी बीमारियां हैं, साइकेट्री में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, मैंने काफी इस पर चिंतन किया और मैं ये नतीजे पे आया, जो हम अगर थियरीज को भी देखते हैं कि आज साइकेट्री में जो थियरी है अलग अलग प्रकार की थियरी है। कुछ जो थियरी है कि भी सिगमंड फ्रॉइड ने
जी।
इसको थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक रूप दिया। भल आज जो सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
करेक्ट।
उसके बाद भी जैसे कि कार्ल यूंग आए जो उनके स्टूडेंट थे कि जिन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन लाया, उसके बाद भी और भी लोग सोचने लगे कि जिन्होंने सोचा कि भी कैसे बच्चे की पर्सनालिटी वो डेवलप होती है और उसमें कुछ ब्लॉक्स आ गए तो पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं होती है और बीमारियां आती है।
Correct.
है ना, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैं भी साइकोथेरेपी सीख रहा था तब काफी दिनों तक पढ़े लेकिन तो भी कंफ्यूज होते थे कि भाई यह सचमुच समझ में नहीं आता है।
Correct.
कि भाई अलग हम 5 ऑथर्स को पढ़ेंगे तो वो सब की जो बातें ना मेल नहीं खाती है कहें।
Correct.
फिर मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए ताकि हम भी समझ पाए, हम पेशेंट्स को भी समझा पाए। और मुझे ब्रह्मा कुमारीज का भी बैकग्राउंड था, इससे पहले ही मैंने ब्रह्मा कुमारीज का कोर्स किया था, मैं रेगुलर मेडिटेशन भी कर रहा था
जी।
तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा सा सहारा मिला और फिर मैंने जो बात को समझा अच्छे से और उसके बाद मैं ये नतीजे पे आया कि बचपन से ही लेकर के, या तो कहे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है
जी।
तब से लेकर के, या तो पूर्व जन्म की भी बात हो सकती है, हम आत्मा को मानते हैं तो पूर्व जन्म की भी बात हो सकती है
जी।
कि जो भी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके साथ बहुत ही पावरफुल इमोशंस जुटे हुए हैं
जी।
है ना, कि जो इमोशनल घटनाएं हैं, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है।
बिल्कुल।
कि जो इमोशनल घटनाएं हैं वो इमोशनल घटनाएं आत्मा पर छप जाती है।
ओके।
जैसे कि बेबी सारे दिन एक कपड़े पहन करके हम घूमेंगे ना, तो वातावरण में जो भी पार्टिकल्स है कपड़ों को लगेंगे लेकिन दाग नहीं लगते, परंतु कहीं पर हम घूम रहे हैं दांबर लग गया तो दांबर का दाग लग जाएगा, है ना, क्योंकि वो पावरफुल है। तो ऐसे ही समझो हमने एक साल बिताया, भी लोग मिले आए तो कुछ नहीं है, परंतु कोई इमोशनल घटना होगी तो वह हमारे आत्मा में वह लग गई।
okay.
है ना। और फिर वह जो लगी वह हमें कंट्रोल करेगी।
okay.
वो हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद भी वह घटना हमें कंट्रोल करेगी। और उसको, वह जो दाग लगा उसको हम कैसे मैनेज करते हैं उस पर सारा मदार है।
करेक्ट।
यू नो हाउ यू मैनेज द होल इवेंट। अगर आप कोई रीति से उसको पॉजिटिवली मैनेज करते हैं तो हो सकता है कि वह पॉजिटिव हो।
करेक्ट।
अगर उसको आप पॉजिटिवली मैनेज नहीं कर सकते हैं
तब वो प्रॉब्लम करेगा,
तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन कर ले।
करेक्ट।
हो सकता है कि वो आपको और कोई बीमारी भी कर ले।
करेक्ट।
तो इस प्रकार से यह साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है।
जी।
और अगर सरल भाषा में समझाना हो, मैंने कई बार ये समझाया है कि इस प्रकार की जो इमोशनल घटनाएं होती है कि एक आत्मा का स्वभाव है कि वह प्लेजर को चाहता है और वह दुख से दूर होना चाहता है, है ना? वह एक यूनिवर्सल सिद्धांत है और उस प्रोसेस में कई बार वो इजीली वो कर लेता है और कई बार वो इजीली नहीं कर पाता है,
करेक्ट
है ना? नोइंगली कहीं भी कॉन्शियसली नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेस ढूंढने पड़ते हैं और वो जो अनकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि जो एबनॉर्मल है,
ओके
ना? जो कॉन्शियस प्रोसेस है उसमें ऐसी बीमारियां हो सकती है कि भी अनड्यू स्ट्रेस आए,
ओके
या तो डिप्रेशन आए, परंतु जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है उसमें सिजोफ्रेनिया भी आ सकता है, उसमें जैसे बहुत सारी बीमारियां, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस आ सकता है ना, एक बाइपोलर डिजीज होता है, बाइपोलर डिजीज हो सकता है,
हाँ जी,
कि क्योंकि वो जो प्रोसेस उसका है वो अननोइंगली पूरा वो कर रहा है,
ओके
है ना? तो ये जो हमारी मैकेनिज्म है वह मैकेनिज्म पर पूरा मदार है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें हमें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ हमें साइड इफ़ेक्ट्स जो दवाइयाँ होती हैं वो सभी दवाइयों की नहीं होती है, वो कुछ एक दवाइयों की होती है जिससे हम दूर रहें तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों आज हमने क्या जाना, आज हम सभी एक मानसिक समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो हमें उसका जवाब ढूंढने के लिए और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में क्या हम साइकेट्रिस्ट का हेल्प ले सकते हैं, क्या वो हमारी बीमारियों को क्योर करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी जो एक बहुत बड़ा पहलू है ज़िंदगी का, मेडिटेशन के थ्रू आप उसे क्योर भी कर सकते हैं। तो अपनी बीमारियों को क्योर करने के लिए मेडिटेशन और प्रॉपर मेडिकेशन, इन दोनों को अपनाइए और आप फिर देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।